ఓం శాంతి. వైసే ప్రవీణాబేన్ కా బహుత్ సారే ఖూబియా హై జో దాదీనే ఇన్కో సీచా హై అప్నే శిక్షాఓ సే ప్యార్ సే డాంట్ సే భీ. బహుత్ లోగ్ ఇన్కో భీ దేఖ్ కే ప్రేరిత్ హోతే హై. जैसे ये योग कराती हैं बहुत पावरफुल इनका स्थिति रहती है. और पहली बार बहुत छोटे आयु में जब मधुबन आई थी तो उस समय दादी प्रकाशमणि ने इनको देखा और इनका कोई विचार नहीं था मधुबन में रहने का, लेकिन दादी जी ने देखा तो उन्होंने इनको बोला आपको इधर रहना है. तो इन्हों के अंदर क्या देखा या इनके जीवन में उस समय क्या थी, तो दादी ने आपको जब बोला भाई आपको मधुबन में रहना है तो आपको क्या फील हुआ, या आपको जो पता नहीं था तो दादी ने ऐसा क्या देख लिया आप में?
ओम शांति. जब हम 1981 में ज्ञान में आए तो हर वैकेशन में हम मधुबन आ जाते थे, और जब वैकेशन में आते थे तो हमें सेवा करनी होती थी क्योंकि सेवाधारी के रूप में आते थे. सुबह में हमारी ड्यूटी रहती थी रोटी सेकने के ऊपर, और शाम को 4 से 8 जो हमारा म्यूजियम है वहां गाइड की सेवा करनी होती थी. तो जब हम गाइड सेवा करके वापस आते थे तो दादी जी कोर्टयार्ड में बैठे होते थे. तो दादी हमें पूछते थे कि कितने लोगों को समझाया, कितनी पार्टी समझाई, क्या नवीनता रही, कोई ने ऐसा प्रश्न पूछा जो आपको नहीं आता हो. तो इसी बहाने हम दादी जी के करीब आते गए, और हर वैकेशन में आते थे तो दादी की नजर मेरे ऊपर थी. और जब 85 में मैं आई और वो लक्ष्य लेकर के आई थी कि दादी जी मुझे जहां भेजे वहां में जाने के लिए तैयार हूं, हालांकि हमारी दीदी जी नहीं चाहते थे कि मैं कहीं बाहर जाऊं, लेकिन मैंने दीदी को कहा कि दीदी आज तो मैं, अगर मैं सूरत में ही रहती हूं तो घड़ी घड़ी घर वाले बुलाते रहेंगे कोई ना कोई बहाने, इससे तो अच्छा है कि मैं कहीं दूर जाऊं. तो कहा ठीक है जो भी आपको संकल्प आता हो. फिर मधुबन में आई तो मैंने दादी जी को कहा कि दादी आप मुझे जहां भेजना चाहे वहां मैं जाने के लिए तैयार हूं. शुरुआत में तो मैंने यही कहा कि दादी मैं 2 मास जाके देखती हूं, अगर मुझे अच्छा लगा तो कंटिन्यू करूंगी, नहीं अच्छा लगा तो सोचूंगी. तो दादी ने कहा ठीक है 2 मास ही रहना है तो फिर मधुबन में ही रहो, क्योंकि दादी जानकी आ रही है और हमें ऐसी एक कन्या की आवश्यकता है जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानती हो और दादी जी कोई सेवा कर सके, ऐसी कुमारी चाहिए. तो मैं समझती हूं कि तुम दादी के साथ रहो और दादी को मदद करो. तो ऐसे कह के दादी ने मुझे ये भी कहा कि प्रवीणा दादी कोई कन्याओं को मधुबन में रखने के लिए राजी नहीं होती है, लेकिन मैं आपको रखना चाहती हूं, क्या तुम रहोगी? तो मैंने कहा कि दादी मैं ये तैयारी करके तो आई हूं कि जो सेवा मिलेगी मैं करूंगी. तो कहती है अच्छा ठीक है दादी के साथ रहो 2 मास रहो फिर आगे सोचेंगे. तो दादी जी ने मुझे दादी जानकी के पास रखा और दादी मुझे देखते रहते थे और यह भी कहा जब दादी जानकी को देते हुए कि दादी ये कन्या मैं आपको देती हूं लेकिन इन्हें आप ब्रह्मा कुमारी बनाएंगे। तो दादी जानकी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि दादी ये तो है ही ब्रह्मा कुमारी। तो बड़ी दादी कहती है नहीं अभी तक तो नहीं है, आप इन्हें ब्रह्मा कुमारी बनाएंगे। और हमने ये यात्रा के अंदर देखा कि दादी जानकी की नजर जिस भी कन्या पर पड़ी होगी उन्होंने उनका जीवन जरूर बनाया होगा, चाहे वो भारत के हैं या विदेश के हैं, लेकिन दादी ने यदि एक बार उसको पकड़ा तो दादी अभी आसानी से छोड़ते नहीं थे, उसकी पालना स्थूल सूक्ष्म सब पालना करते रहे। तो मुझे भी दादी ने ब्रह्मा कुमारी बनाया क्योंकि मैं जब आई थी तब एकदम कोरा कागज थी, न हिंदी लिखना आता था, बोलना भी बहुत मुश्किल से आता था क्योंकि गुजराती बैकग्राउंड रहा, लेकिन मधुबन में आने के बाद ये सब पॉलिश होता गया और दादी ने एक कोरा कागज होता है तो जो लिखना होता है वो लिख सकते हैं, तो ऐसे ही मुझे भी तैयार किया।
तो 2 मास अभी तक पूरा नहीं हुआ
2 मास अभी तक पूरा नहीं हुआ।
तो इधर कितने लोग हैं जो दादी को नहीं देखा है, दादी जानकी को स्थूल में नहीं देखा है, भले टीवी में देखते होंगे, तो कितने हैं जो पहली बार इधर मधुबन में आए हैं? 50-50। दादी प्रकाशमणि को जो जिन्होंने नहीं देखा है
काफी है वो तो।
तो ऐसा कुछ सेशन रखेंगे जो दादियों का सारा दो दो मिनट दिखा के उनको आपको परिचय देवे, कौन थे क्या थे वगैरह। तो इन्होंने तो कोरा कागज आए थे, तो जैसे बट्टी चल रही है तो योग में या मुरली में या मधुबन में आपको चांस मिलता है कुछ दिन रहने के लिए, फिर 1 साल के बाद आप आते हैं। तो दादी ने जो आप इतना नजदीक देखा तो क्या ध्यान अपने ऊपर रखा जो ये लोग अभी 2-3 दिन इधर हैं उनके ऊपर रखे जो पूरा साल का ताकत इनके अंदर आए? तो दादी ने क्या उस प्रकार से पुरुषार्थ किया योग में हो मुरली में हो जो आपने नोटिस किया, हाँ ये ऐसा करना चाहिए?
दादी कई बार अपना अनुभव सुनाते रहे कि दादी जब ज्ञान में आए तो 1.5 साल देरी से आए थे, यज्ञ शुरू हुआ क्योंकि दादी खुद बंधन में थे, तो दादी को बहुत फील होता था कि ये 1.5 साल का गैप कैसे पूरा करूं। तो दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा मैं क्या पुरुषार्थ करूं कि इनों के साथ हो जाऊं क्योंकि मैं 1.5 साल देरी से आई हूं। तो बाबा ने कहा कि मुरली 6 बारी पढ़ना। तो दादी ने सोचा कि 6 बार क्या, मैं 12 बारी पढ़ूंगी। और 6 महीना दादी खतिये पर नहीं सोए थे, वहां बेंच हुआ करती थी, बैठक और लिखने का होता था, तो वो बेंच पर लकड़े की बेंच पर ही दादी 6 मास थोड़ी आंख लगा लेते थे और वापस उठ करके मुरली पढ़ते थे। 1.5 साल ही देरी से आए हैं तो भी दादी को ये ओना कि मैं कैसे ये गैप को पूरा करूं। तो हम सोचे हम कितना देरी से आए हैं। और मैंने देखा कि दादी ने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया है, और मुरली कभी मिस नहीं की है। कितनी भी बीमारियां आती थी, हॉस्पिटलाइज होना होता था, लेकिन दादी तब भी मुरली पढ़ते थे, सुनते थे। सुनी हुई मुरली भी बाद में दादी पढ़ते जरूर थे। तो दादी ने मुरली को, हमने एक बार पूछा भी था दादी को कि दादी आप जब मुरली पढ़ते हो तो ऐसे लगता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। और हालांकि हमारे पास मुरली का जो स्टॉक है वो केवल 5 साल का है, तो कितनी बार वो मुरली रिपीट हुई होगी, लेकिन दादी जब भी सुनाते थे, चाहे बड़ी दादी सुनाते थे, रस भर देते थे मुरली में। और वो उस दिन का भोजन जैसे है, तो दादी ने सुनाया था कि एक बार बाबा को बॉम्बे में हॉस्पिटल में एडमिट किया था और बाबा ऑपरेशन थिएटर से फिर रूम में जब आए तो बाबा ने दादी को बोला कि जनक पैड और पेन दो, आज बाबा ने बच्चों को खाना नहीं खिलाया है। तो बाबा ने उसी वक्त मुरली लिखी और वो मुरली ट्रेन के माध्यम से मधुबन पहुंचाई। तो दादी कहती वो सीन मैंने जब देखा था कि बाबा को कितना ओना है हम बच्चों को लायक बनाने के लिए, तो मैं अपना इतना तो ध्यान रखूं कि बाबा मुझे लायक बनाना चाहता है, लेकिन मैं इनिशिएटिव लेती हूं, मैं अटेंशन रखती हूं इस बात का। तो दादी को मुरली के लिए बहुत बहुत प्यार कहो, भावना कहो, रिगार्ड कहो, बहुत ही। लास्ट दिन तक दादी ने कभी मुरली मिस नहीं किया। तो मैं तो यही समझती हूं कि आप भी यहां आए हो, जैसे एक अपने आप से प्रण करके जाए कि कुछ भी हो जाए बाबा की मुरली मिस नहीं हुए। आजकल तो चाहे आप सेंटर पर नहीं जा सकते हो, लेकिन टीवी पर आती है। उन दिनों में तो टीवी था भी नहीं और मुरली इतना सुनते भी नहीं थे, सेंटर पर दूर दूर तक जाना पड़ता था। अभी तो सबके हाथ में मुरली है ना, सबके पास, हाँ, सभी के मोबाइल में मुरली है ना। फिर भी कभी कभी मिस होती है, कभी नहीं होनी चाहिए। जैसे शरीर को हम कितनी बार भोजन देते हैं, ऐसे आत्मा को भी भोजन देना, और वो भोजन है बाबा के महावाक्य। इवन साकार बाबा को भी आप देखो कि लास्ट दिन, जिस दिन बाबा को अव्यक्त होना है, बाबा को तो मालूम था, लेकिन बाबा ने सुबह में क्लास नहीं कराई थी। बड़ी दादी ने कहा कि बाबा मैं जाकर के क्लास कराती हूं, आप आराम करो। फिर भी रात को बाबा ने कहा कि जल्दी क्लास बुलाओ, बाबा क्लास में चलते हैं। सोचो कि बाबा को कितना ओना है हम लोगों को लायक बनाने के लिए। उतना ओना मुझे स्वयं को है। तो आप ऐसी कोई बात अपने लिए लेकर के जाए जो आप, मैं नहीं कहती हूं एक साल, लेकिन जीवन भर वो बात हमारे जीवन में रहे।
हम भी देखते हैं, कई लोगों को व्हाट्सएप में आया होगा, दादी की नाक में ऑक्सीजन पाइप भी है फिर भी दादी कुर्सी पे बैठ के मुरली पढ़ रही है। तो मुरली में वो ताकत है जो हमारा जीवन को सुधार देवे। तो दादियों ने, बाबा ने मुरली के लिए इतना जोर दिया, और दादी जानकी के सामने कोई भी ऐसा टेढ़ा बैठा है, ऐसा हाथ किया है, बिल्कुल पसंद नहीं होता था। सीधा दादी बोलती थी मुरली में, आप क्यों ऐसे बैठे हो, कोई चिंता है?
दादी को ये भी नहीं पसंद आता था कि क्लास में कोई आता है और सबका अटेंशन इधर उधर जाता है, तो दादी तुरंत कहती है कि इधर उधर अटेंशन हमारा क्यों जाए। तुरंत दादी कोई बहन का नाम पता होता था या कोई होता था तो दादी तुरंत बोलते थे। तो दादी बहुत ही एकाग्रता से मुरली सुनते थे और मुरली सुनने के तुरंत बाद दादी आधा घंटा क्लास भी कराते थे। तुरंत ही दादी उसके ऊपर विचार सागर मंथन करके मुरली के ऊपर क्लास कराते थे। तो बहुत ही उनका अटेंशन रहता था।
तो दादी के लिए कह सकते हैं, दादी के लिए ये मुरली जो है उनके लिए जान थी। और जब दादी योग कराती थी, ये तो मशहूर अभी लास्ट में हुआ था जो दादी का माइंड जो है स्टेबल था, लेकिन 80s में कोई उस समय कोई उतना कमेंट्री गाने उतना कुछ होता नहीं था। तो दादी ने क्या योग में ऐसा जो इम्पोर्टेंस या ध्यान दिया, इस प्रकार से करना चाहिए या सीधा बैठना है या कैसे भी बैठ सकते हैं या मौन में रहना है या नहीं रहना है, तो उनके जीवन में मौन का क्या इम्पोर्टेंस था और योग में वो क्या युक्ति रचती थी जो उनका मन उतना स्टेबल होता गया।
दादी हमेशा अंतर्मुखी जिसको कहे, इवन कमरे में मैं होती थी या कोई और भी होता था तो जितना आवश्यक होता उतना ही बोलते थे। और सारा समय दादी के पास तो मुरली बाजू में ही रहती थी, तो अगर फ्री हुए तो वो मुरली उठा करके पढ़ना शुरू करते थे। लेकिन योग की गहराई भी दादी को बहुत पसंद थी। हमने तो यहां तक देखा है कि दादी के पास विल पावर भी बहुत जबरदस्त थी और वो विल पावर भी आती है एकाग्रता से, क्योंकि जब भी दादी बीमार होते थे दादी एकदम अंडरग्राउंड चले जाते थे और उस समय उनका जो मनन चिंतन होता था वो जब दादी रिकवर हो जाते थे तब दादी कोई नवी पॉइंट्स नवी आइडियाज के साथ बाहर आते थे और वो विल पावर ही उसको ठीक करता था। क्योंकि डॉक्टर्स की दवाई में तो दादी हमेशा कहती थी कि मेरा बाबा ही मेरा सर्जन है, वो ही ठीक करेगा। और दूसरा हमने देखा कि जब भी ये मेगा प्रोग्राम होता था तो उस समय भी दादी जब अपना भाषण पूरा करते थे फिर दादी ने वो गीत फिक्स किया था, शांति सागर की लहरें वाला गीत, वो गीत दादी बजवाते थे और सबको वो शांति की अनुभूति कराते थे। क्योंकि जो भी आत्माएं बाहर से आई हुई हैं तो वो आत्माएं भी कुछ अनुभूति करके जाए, तो वो दादी का हमेशा एक एम रहता था। और इवन घर में भी जो मिलने के लिए आते थे कॉटेज में दादी को, उनको भी दादी पहले साइलेंस में बिठाती थी। कितना भी बड़ा वीआईपी हो दादी उनको एकदम साइलेंस की गहन अनुभूति कराते थे। तो योग भी उन्होंने इतना ही इम्पोर्टेंस अपने जीवन में दिया है। हमने कभी दादी को फ्री नहीं देखा है। जब भी फ्री होंगे तो वो ऐसे ही लगता था कि जैसे बाबा के साथ हैं। हम कुछ पूछने भी जाएंगे तो हिम्मत नहीं होती थी पूछने की, क्योंकि एकदम दादी बाबा मई हो जाते थे। ऐसे नहीं लगता था कि कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन उनका नेचुरल एक अटेंशन रहता था।
तो आप लोग आए हैं अभी एक दिन, कल का दिन है ना लास्ट, कम से कम जैसे इन्होंने बोला दादी जितना आवश्यक होता था उतना ही बोलती थी, अंतर्मुखी रहती थी। तो हम तो सारा दिन कुछ न कुछ कनरस में या आपस में लेन देन शब्दों द्वारा करते ही रहते हैं, करते रहते हैं, और रात को भी बहुत देर तक कमरों में बात चलती रहती है। एटलीस्ट कल एक दिन के लिए ऐसा कुछ अनुभव करो जो बात आपको सारे जीवन में आपको मदद करे। तो पूरा साल तो मिलेगा, लोग भी मिलेंगे, बातें भी मिलेगी, खाना भी देखने को भी मिलेगा, फोटो खींचने को भी मिलेगा, लेकिन जो बात आपकी विल पावर बढ़ाने की बात वो केवल मधुबन में मिलेगा, जो शक्तिशाली रूप में जो भगवान ने या ब्रह्मा तन में कर्म किया और ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होने का संपूर्ण होने का कर्म या पुरुषार्थ इधर किया इस तपस्या भूमि में, वो शक्ति होती। तो दादी तो अपना ध्यान रखती थी, लेकिन जैसे अभी सेंटरों में भी बहनें कुछ टेंशन में आते हैं या कुछ बहुत बिजी हो जाते हैं तो जिज्ञासु या भाई बहनें कुछ पूछते हैं, कई बार थोड़ा शब्द ऊपर नीचे भी होता है तो डांटने जैसा लग जाता है, उससे थोड़ा नाराज भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो कभी एक दिन नहीं गया, दो दिन नहीं गया, मुरली में भी नहीं जाएंगे, अभी तीन मिनट इतना साइलेंस में जाओ जो दादी का अनुभव इधर हो बाबा के साथ। तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे सेंटर्स में बहनें कुछ बोल देते हैं या हमको खराब लगता है, ऐसे दादी जी ने कभी आपको डांटा हो या आपने कुछ गलत कर दिया या शिक्षा दिया हो या पनिशमेंट दिया हो? जैसे मेरे सामने एक बात थी, जैसे दादी को खाना परोस रहे थे, एक भाई रोटी लेके आया तो तुरंत दादी ने पूछा आज अमृत वेला किया आपने? वो भाई ने बोला नहीं दादी, मिस कर दिया आज। तो दादी ने बोला तुम्हारा हाथ का रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी। तो वो वापस रोटी गया, फिर दूसरी माता ने जो बना के लेके आए। ऐसे कुछ घटनाएं जो आपके जीवन को सुधारा हो या उस समय आपने कैसा अपने मन को बनाया जो आज हम सेंटरों में बहनें कुछ बोल दे तो हम अपने आप को, या भाई बहनें आपस में कुछ बोल दे तो हम अपने आप को कैसे मन ठीक रखे और खुश भी रहे और जीवन में वो सुधार भी लेके आए।
मैं ये तो नहीं कहूंगी कि दादी ने डांटा, लेकिन हाँ कान जरूर पकड़ा है क्योंकि दादी शुरुआत में जब मैं दादी के पास आई, दादी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ऑफिशियल थे। दादी कभी हंसते भी नहीं थे क्योंकि वो अपनी दुनिया में ही रहते थे, क्योंकि वो रूप तो मैं नहीं समझती हूँ आपने किसी ने देखा होगा, लेकिन आप यदि दादी की बहुत पुरानी क्लासेस सुनो तो उनसे पता चलता है कि दादी बहुत ही ऑफिशियल थे। और शुरुआत में घर से आई थी, नई नई थी, तो कभी कुछ दादी बोल देते थे तो थोड़ी आंखें भर आती थी। तो मुझे भी दादी ने एक बार कह दिया था कि तुम्हारे हाथ का पानी भी मैं नहीं पीऊंगी, अगर तुमको रोना ही है तो घर जाओ। तो फिर मैंने अपने आप को उस समय से स्ट्रांग बनाया कि कैसे भी है लेकिन हमें अपने जीवन में कुछ सीखने को है। और दूसरा, मैं जब दादी के पास आई थी तो बहुत यंग, 21 साल की थी, और मैं सेंटर पर जा रही थी मधुबन के बाद। शुरुआत में दादी ने मेरी वो भी एक अच्छी टेस्ट लिया था कि 10 साल में जब दादी लंदन से आते थे तो मैं आ जाती थी, और दादी जब लंदन से चले जाते थे तो मैं सेंटर जाती थी, क्योंकि दादी हमेशा नहीं रहते थे। तो फिर दादी ने मुझे सेंटर भेजने के टाइम पर ये बात जरूर कही कि तुम ज्यादा स्वीट नहीं बनना और ज्यादा रमणीक नहीं बनना। उस समय मुझे समझ में नहीं आया था, बाद में थोड़ा समझ में आया कि क्यों दादी ने कहा ज्यादा स्वीट नहीं बनना। लेकिन बाद में एक समय ऐसा आया कि दादी मुझे बार बार यही कहे तुम मीठी कभी बनेगी, क्योंकि फिर आवाज में मेरा आवाज थोड़ा बड़ा भी था, नो डाउट, तो दादी को मेरी आवाज से थोड़ा इरिटेशन ही होता होगा, तो कहती थी तुम मीठी कभी बनेगी, माना जोर से बोलते हैं तो वो मिठास नहीं रहती है, तो इसीलिए दादी मुझे बार बार वो बात कहती थी, अंडरलाइन कराती थी। और मैंने दादी ने कभी भी मुझे कुछ कहा होगा, मैंने एक बात अंडरलाइन किया था कि यदि मैं रूठ जाऊंगी, अपसेट हो जाऊंगी, तो मैं अधिकार खो दूंगी, दादी दोबारा मुझे फिर कहेगी नहीं, मुझे करेक्शन करेंगी नहीं। तो मैंने ये मेरी नेचर कभी नहीं बनाई कि मैं रूठ जाऊं, अपसेट हो जाऊं, नाराज होकर के बैठ जाऊं, मूड ऑफ करूं, नहीं। तो नहीं तो मैं मेरा अधिकार खो देती थी। तो दादी का मेरे ऊपर बहुत ही हुज्जत रही है कि उसको जो कुछ भी कहना होता था बेझिझक वो मुझे कह सकती थी। तो कभी भी कान पकड़ना मैंने उसको परमिशन दे रखी थी कि हाँ कहो, नहीं तो हम वो गलतियां बार बार करते रहेंगे अगर कोई हमें करेक्शन नहीं करेंगे तो। और बड़े हमारे से डरेंगे कि अगर मैं उसको कुछ कहूंगी तो ये नाराज हो जाएंगी, मूड ऑफ करके बैठ जाएंगी, फिर वातावरण घर का बहुत ही तंग हो जाएगा। इसलिए मैंने कभी भी मूड ऑफ नहीं किया, नाराज होकर के मैं बैठ नहीं गई, क्योंकि एक अच्छी माँ, एक स्ट्रिक्ट माँ और स्ट्रिक्ट टीचर बच्चों को कुछ बना देता है। तो हमारी दादी भी स्ट्रिक्ट थी, अच्छी स्ट्रिक्ट टीचर भी थी, लेकिन अगर माइंड करते तो हम वही नाजुकपन ही अपने जीवन में रहता। तो मैंने दादी को पूरा हुज्जत दे रखी थी कि कुछ भी कहो दादी, मुझे कोई माइंड नहीं होगा।
तो हम ये समझे, हमारा जीवन विद्यार्थी जीवन में टीचर मारते भी हैं, चलो आजकल कोई टच भी नहीं करता है, लेकिन हमारे जमाने में तो लकड़ियां तोड़ देते थे टीचर्स हमारे ऊपर, और इतना मार खाया है तो हमारे जीवन अभी बनी है ऐसे, कुछ भी हम फेस कर सकते हैं, या डर नहीं है, विल पावर है, या कुछ भी। तो हम ये समझे जो हमारा ब्राह्मण परिवार, हमारा ब्राह्मण परिवार पूरा कलप में, हम लोग ही साथ में आएंगे ना, दूसरा कोई आएगा नहीं सतयुग में, तो हम ही अपने आप को ठीक करना है। तो इसलिए हम ये समझे कि कोई कुछ भी बोलता है तो सीखने की भाव रखे, जो हमारा मूड ऑफ नहीं हो। जो बाबा भी मुरली में बोलता है, आपस में लड़ लेते हैं तो मुरली छोड़ देते हैं, बाबा के ऊपर नाराज हो जाते हैं, तो बाबा क्या किया आपको। तो इसलिए सेंटर नहीं जाना वो भी हमारे संकल्प में नहीं आए।
बाबा को तो कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान तो मुझे ही होता है।
तो बड़े सिखाएंगे तो भी हमको ही सिखाएंगे, हमारा जीवन सुधरेगा। तो दूसरा चीज जो दादी का निजी जीवन में, जैसे नाना हो या कपड़ा रखने का हो या भोजन खाने का हो, हमने सुना है बहुत सिंपल रहती थी दादियां, बहुत सारे क्लासेस में बताया है, मेरा एक रुमाल भी एक्स्ट्रा नहीं रखूंगी, एक रुमाल किसी को दूंगी नहीं या गुम नहीं करूंगी ऐसे। तो दादियां हमारे कमरे में भी आ जाते थे चुपचाप, हमको पता ही नहीं होता था, हर अलमारी को खोल के देखते थे हम कैसे हैं क्या है। तो दादी के जीवन में इस प्रकार की जो छोटी छोटी बातों में ध्यान रखा है, जो आप अपने जीवन में धारणा लेके आए, हाँ इसको देख के मेरे जीवन में ये प्रेरणा मिली। तो उस प्रकार से हम लोग अपने जीवन में भी इतनी सिंप्लिसिटी या जो भी प्रेरणाएं दादी के जीवन में थी वो लेके आए तो और भी हमारा जीवन खुशी या संतुष्टता हमको महसूस हो। ऐसी कौन सी बात थी जो दादी के जीवन लाइफस्टाइल पर्सनल रूप से?
कई बातें हैं दादी के जीवन की। तो एक बात तो ये है कि दादी पहले जब साड़ी पहनते थे, कॉटन साड़ी पहनते थे, और उसको दादी स्टार्च भी नहीं लगाते थे क्योंकि दादी से संभली नहीं जाती थी, हैवी हो जाती थी। कॉटन साड़ी वैसे भी हैवी होती है। तो रोज दादी जब शाम को रेस्ट करने के लिए जाते थे तो लपेट करके पानी छिड़क करके अपने तकिए के नीचे रख देते थे। तो मैंने देखा कि ये कोई आयन थोड़ी हो जाती है। तो फिर हम ले जाते थे और दादी जब वापस 4:30-5 उठते थे तो मैं साड़ी इस्त्री करके लेके आती थी। और दादी के पास 4 जोड़ी कपड़े रहते थे, ज्यादा कपड़े नहीं रखती थी दादी। लेकिन जब हमें ट्रैवलिंग पर जाना होता तो दादी की तैयारी जब पैकिंग करनी होती थी बहुत दिक्कत होती थी। तो हम दादी को रिक्वेस्ट करते थे कि दादी क्या डालू बैग में, क्योंकि 2 जोड़ी तो धुलाई में गए होते थे, एक पहना होता था एक अलमारी में होता था। फिर धीरे धीरे कपड़े दादी कहती है नहीं वो धोबी घाट वाले को बोलो ना वो करके दे देंगे, वही रखना है। उसके बाद जब दादी की तबीयत खराब होने लगी, उम्र होने लगी, तो दादी को वो गाउन पहनने का डॉक्टर ने सलाह भी दिया और दादी को बड़ी दादी से परमिशन लिया कि दादी क्या मैं ये पहन सकती हूँ। तो बड़ी दादी ने कहा हाँ हाँ पहन सकती हूँ, क्योंकि दादी को मेन पेट का ही प्रॉब्लम था। तो फिर दादी ने वो गाउन पहनने के लिए भी परमिशन लिया और दादी जी ने बड़ी खुशी से वो परमिशन दिया था दादी को। तो वो भी हम दादी कोई भी उनके जैसा पेशेंट आता था ना उठा करके दे देते थे। इवन कोई रोता हुआ दादी के पास आते थे ना तो वो रुमाल अपना उठा करके दे देते थे दादी, क्योंकि फॉरेनर्स तो टिश्यू यूज करते हैं, तो दादी अपना रुमाल उसको दे देते थे। और हम जब पूछते थे दादी आज का रुमाल कहाँ गया, तो दादी कहती वो तो दान हो गया। तो ऐसे दादी का जो नेचुरल नेचर थी दान करने की, बहुत ही आसानी से दादी अपनी अलमारी खोल करके चीजें दे देते थे। तो दादी को ये नहीं होता था कि ये मेरा है, मेरे पास इतना ही है, मैं इसको क्यों दूं। नहीं, उसको आवश्यकता है। एक बार दादी भंडारे में, पहले दादी 4:45 योग के बाद भंडारे में जाते थे, वहीं चाय पी करके आते थे। शुरुआत में हमने देखा तो मैंने देखा दादी बिना शॉल ओढ़े वापस आ रहे हैं, ठंडी के दिन थे। तो मैंने कहा दादी शॉल तो पहन करके गए थे, कहाँ गई? तो कहते एक माता को बहुत ठंडी लग रही थी तो उसको दे दी। तो इस प्रकार से दादी की भावना रहती थी कि मेरे से ज्यादा उसको आवश्यकता है। चप्पल भी दादी ज्यादा महंगी, उसको पहले तो कभी दादी मार्केट में जाते नहीं थे, तो उसी की चप्पल जब से मैं आई तो मैंने लाना शुरू किया। तो एक बार मैं 700 रुपये की चप्पल लाई। अब दादी को कैसे बताऊं कि 700 रुपये की है, तो सच बोलूं या झूठ? तो फिर दादी को मैंने बोला कि दादी ने पूछा पहला ही प्रश्न कितने की आई, तो मैंने कहा 200 की आई। दादी कहती वापस दे आओ। अब वापस मैंने कहा दादी वापस कौन लेगा, दुकान वाले तो उसके बदले में दूसरी चप्पल ही देंगे, ये वापस नहीं लेंगे। फिर दादी ने अपने घर में जो चप्पल बनाने वाला भाई है उसको बुलाया और उसको बोला कि देखो ये कितनी महंगी चप्पल मेरे लिए लाई है, आप कितने में बनाता है? तो वो भाई ने कहा कि दादी घर में तो 50-60 रुपये में बन जाती है। तो कहते आज के बाद आप ही मेरी चप्पल बनाएंगे, ये मार्केट से फालतू खर्चा करती है। तो मैंने इकोनॉमी बहुत थी दादी के अंदर। तो हम देखते हैं कि कितना त्याग था उसके जीवन में जो बहुत प्रेरित करता है। तो कहां पर भी जाते हैं तो दादी पहले यही देखती हैं कि सिंप्लिसिटी कितनी है इनके पास।
आजकल तो 200 नहीं 2000 20000 का भी चप्पल जूते मिल जाते हैं, बेहिचक खरीद लेते हैं। और दादी के जीवन में, जीवन से आप अपने जीवन में क्या लेके आए हैं जो आज हमारे सामने इतना अनुभवी? आप बहुत विदेशों में भी गए हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा अनुभव होता है और आपके लौकिक वाले भी बुलाते रहते हैं और भारत में भी बहुत सेंटरों में आपको बुलाते हैं। तो क्या चीज थी जो आपके जीवन के अंदर अभी आप लेके आए तो वो ताकत आपको भी मिला है?
मैंने कई चीजें अंडरलाइन किया है अपने जीवन में। एक अमृत वेला बहुत पक्का किया है। और मैं कई बार देखती थी कि दादी रात को सारी रात सोए नहीं होते थे, लेकिन अमृत वेले जरूर बैठना है। हम लोगों को बोल करके रखते थे कि सुबह मुझे उठाना है। हमारे से पहले ही उठ जाते थे लेकिन पक्का करते थे। तो मैं भी अमृत वेले को उतना ही प्राधान्य देती हूँ। और मुरली, क्लास में जाने से पहले भी मैं मुरली सुनती हूँ। आजकल तो यूट्यूब में आती है मुरली, तो आसान हो गया है सुनना। तो ORC की मुरली सुन करके फिर क्लास में जाती हूँ। नोट्स लेना भी एक एम रखी है कि मुरली की नोट्स जरूर लेनी है ताकि प्रिंट हो जाए हमारे दिमाग के अंदर। और सेवा तो सेवा होती ही है, क्योंकि सारा दिन हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बिजी रहते हैं। तो वहां पर भी आपस में कोई बातें, व्यर्थ बातें करने का कोई अवसर नहीं होता है, तो मैं अपना कुछ न कुछ मुरली ही पहले तो सुनती, या किसी का क्लास चलता होता है वो सुनते हैं। तो क्या है, उनसे हम व्यर्थ से बचे रहते हैं। क्योंकि मैंने देखा था दादी के पास व्यर्थ जीरो, कभी व्यर्थ उसके पास आया ही नहीं। कोई परचिंतन की बात दादी के पास कभी नहीं आई। कभी दादी को इंटरेस्ट ही नहीं होता था कि कोई दादी को परचिंतन की बात करे भी। तो दादी हमें यही कहती, किचड़ा होगा वहां किचड़ा डालेंगे, इंटरेस्ट होगा आपको तो सुनाएंगे। तो ये भी एक रहता था। और शाम को भी बाबा की मुरली सुनते सुनते सो जाना। या दादी हमेशा, दादी रात को 11 बजे भी कोई किसी का फोन आता था, 10 बजे भी किसी का फोन आता था, तो दादी आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा वहां से शुरू करते थे, अंडरलाइन कराते थे कि आज बाबा ने ये बात अंडरलाइन कराई है। उसके बाद दादी कारोबार की बात करते थे। तो कैसे दूसरों के जीवन में भी ये ज्ञान का फाउंडेशन रहे, ये उसका हमेशा ध्यान रहता था। और मैंने एक नियम और पक्का किया है कि 3 दोपहर को भी, ऐसे नहीं कि खाना खाया और सो जाओ, मैं 3 बजे से पहले कभी कमरे में नहीं जाती हूँ। चाहे वो मधुबन हो, चाहे कोई सेंटर हो, विदेश हो, लेकिन मैं 3 बजे तक कभी कमरे में जाती नहीं हूँ कि मैं सो जाऊँ। क्योंकि दादी के टाइम पर भी मेरा वो टाइम टेबल रहता था। तो मैं कभी भी वो पक्का किया हुआ है कि 3 बजे ही मैं कमरे में जाऊँगी। तो ऐसे, और शाम को भी, रात को भी बाबा के कमरे में जाकर के बाबा से गुड नाइट करके फिर अपने कमरे में जाना सोने के लिए। तो कई ऐसी बातें हैं जो हमें बहुत प्रेरणा मिली है दादी के जीवन से। क्योंकि दादी पांडव भवन अकेला था उस समय, दादी रोज बाबा के कमरे में जाते थे बाबा को गुड नाइट करने के लिए। तो एक दिन हंसी की बात थी कि दादी बहुत देरी हो गई तो गए नहीं। फिर दूसरे दिन सुबह कहती है, मैंने कल एक बहुत बड़ी गलती किया है। हमने पूछा, क्या गलती किया दादी आपने? आपने तो कोई गलती नहीं किया। कहती है, कल रात को मैं बाबा को गुड नाइट करने नहीं गई थी। तो हमने भी हंसी में कह दिया, हाँ आज सारी रात बाबा भी जाग रहे थे कि जनक आएगी, आई नहीं, तो बाबा भी रात भर जाग रहे थे। तो दादी हंस रहे लगी, कहती नहीं तुम मुझे याद दिलाओ कि मैं बाबा की कमरे कैसे मिस किया। तो बाबा को गुड नाइट करके फिर सोना। बड़ी दादी भी थे तो दादी शांति स्तंभ पर चक्कर लगा करके बाबा के कमरे में जाकर के फिर जाते थे अपने कमरे में। तो दादियों के जीवन में ये बहुत इम्पोर्टेंस रहा है बाबा को गुड नाइट करके सोने का। तो हम भी ये बात अपने जीवन में पक्की करें कि उठने से बाबा हमारा, एक्चुअली अमृत वेला रात से शुरू होता है। जिस स्थिति में हम रात को सोएंगे वही स्थिति में हम सुबह उठेंगे। तो क्यों नहीं हम बाबा के साथ बाबा को याद करके सोए, ताकि सुबह उठते ही वो ही बातें हमारे दिमाग में रहे।
तो हमने भी सुना है, हमने देखा भी है, जैसे दादी कॉटेज में दादी रहती थी तो दादी कॉटेज के बाबा के रूम में भी जाएंगी, फिर आते आते जो बाबा का कमरा है उसमें भी जाएंगी, फिर क्लास में आएंगी। तो बाबा के कमरे के लिए इतना इम्पोर्टेंस था। जो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं हर समय माँ बाप के साथ जाके चिपक जाते हैं। तो जैसे दो तीन दिन पहले मुरली में बाबा ने बोला ना, बच्चे कई बार मेरे सामने आते ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो जैसे दादियों के जीवन से हम जो सीखते हैं, जो आप इधर हैं तो आपस में मिलके बात करने के बजाय बार बार बाबा के कमरे में जाओ बोलो, या घर में भी रहते हैं तो कहीं जाना है पहले बाबा को बोलो, बाबा आज मार्केट जा रहा हूं, या सब्जियां खरीदने जा रही हूं, या दूध लेने जा रही हूं, या बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूं। तो दादी उंगली भी दिखाती थी। तो ये उंगली दिखाना कब से शुरू किया दादी ने? हर एक को, दादी का फेमस था, विदेश में एक पुतला भी बनाया था कार्डबोर्ड में, दादी का उंगली है। तो किन किन बातों में दादी उंगली दिखाती थी?
दादी का वो एक यूनिक रूप था उंगली दिखाने का, और वो कोई गुस्से में नहीं दिखाती थी, लेकिन हमें अंडरलाइन कराने के लिए, हमारा अटेंशन खींचवाने के लिए दादी अंगुली दिखाती थी। आप लोगों ने वो चित्र भी शायद देखा होगा दादी का, लेकिन हमने देखा कि कोई गलती तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ भूल जाता था। हम कई बार बहुत आसानी से दादी को कह देते थे, दादी हम भूल गए, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, बाद में करेंगे। तो दादी कहती थी, तुम्हारा योग ठीक नहीं है, अगर योग ठीक होता तो भूलते नहीं। और भूलने के संस्कार, बातें माने कोई काम भूल जाते, सेवा भूल जाते हैं, कल उठ करके आप बाबा को भी भूल जाएंगे। एक बात याद आई कि एक बार दादी ने मुझे शाम को भोजन के बाद कहा कि वो बहन आई हुई है, ठंडी के दिन है, उसके पास मफलर नहीं है, बहुत ठंडी है, तो उसको तुम मफलर दे देना। मैं भूल गई। दादी रात को 10:15 के करीब कमरे में आए और मुझे पूछा, आपने उसको मफलर दिया? मैं क्या जवाब दूं? मैंने कहा, नहीं दादी मैं भूल गई। कहती, भूल गई? उसका बुद्धि योग कि दादी ने कहा था लेकिन दिया नहीं, अभी ढूंढो कहाँ है वो। भी रात को 10:15 वो भी सो गई होंगी, ट्रैवलिंग करके आई थी, लेकिन दादी कहती नहीं दे आओ उसको कमरे में। तो मैंने, दादी का बहुत अटेंशन रहता था, तो कोई बात भूल जाते थे तो उंगली जरूर दिखाती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था। और खान भोजन पर भी हम बैठते थे तो कभी कोई चीज अच्छी लगती है और कोई चीज नहीं भी अच्छी लगती है तो चेहरा का एक्सप्रेशन बदल जाता है, तो भी दादी को अच्छा नहीं लगता था। दूसरा, कभी कोई दादी को कंप्लेन करते थे और वो कंप्लेन करते वक्त उसका चेहरा बदल जाता था तो दादी कहती थी, उनके जैसा चेहरा तुम क्यों बना रही हो। तो ऐसी बातों में भी कि तुम्हारे चेहरे पर उनकी बात क्यों आई, साक्षी होकर के सुनाओ ना। लेकिन दादी कभी किसी की कंप्लेन सुनना नहीं चाहते थे, कंप्लेन करो तो ज्ञान ही सुनाएंगे। तो हमने दादी को एक बार बोला भी सही कि दादी आप तो कोई भी बात आपको सुनाते हैं तो आप तो ज्ञान ही सुनाते हैं, ज्ञान कोई सॉल्यूशन है क्या? तो दादी कहती, अच्छा तुम बताओ तो सॉल्यूशन क्या है। कहती है, ज्ञान ही एकमात्र सॉल्यूशन है, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज्ञान है। अगर तुम ज्ञान यूज नहीं करेगी तो तुम्हारे संस्कार तुम्हें यूज करेगा। फिर बाद में चिंतन चला कि हर बात में ज्ञान फर्स्ट। अगर ज्ञान को हम यूज नहीं करते तो हमारे अंदर संस्कार है वो हमें यूज करता है, हमें मालूम भी नहीं होता है। क्योंकि जैसे हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो वो कंफर्ट जोन हमें, हमारे संस्कार हमें यूज कर रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो इसीलिए दादी कहती है, ज्ञान को यूज करो। तो कई बातों में दादी का हमें अंडरलाइन कराने के लिए भी अंगुली दिखाती थी।
तो हमारे जीवन में भी हम कुछ भी भूल जाते हैं तो दादी का उंगली याद रखें। जैसे बाप दादा का भी फोटो है जो धर्मराज का रूप एक बार बाप दादा का था, तो उसमें बहुत सारे मुरली के पॉइंट्स भी प्रिंट करा के रखते हैं। तो दादी को भूलना अच्छा नहीं लगता था। तो दादी का भोजन के प्रति बहुत ध्यान था। हम लोगों को भी कहती थी, डाइनिंग हॉल आती थी, किचन में चक्कर जरूर मारेगी एक बार, और डाइनिंग हॉल में आती थी, क्या खा रहे हो दिखाओ। और दादी हम लोगों को बोलती थी जब भोजन लेने जाते हैं, अच्छा आज खिचड़ी है, सिर्फ आज खिचड़ी है, आज कद्दू की सब्जी है, लेकिन चेहरा आप भले नहीं लो लेकिन वो फील नहीं होना चाहिए, ये क्या है आज खिचड़ी है, सिंपल नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो उतना ध्यान हमारा खिंचवाती थी। तो दादी जब भोजन करती थी तो हमने सुना है और देखा भी है, कई बार सिर्फ दादी दही खा के रह जाती थी या पपीता खा लिया पूरा हो गया। लेकिन दादी किस प्रकार से अपने भोजन को ताकत बनाती थी या कौन सी स्थिति में थी जो ब्रह्मा भोजन उनका उतना इम्पॉर्टेंट होता था? और हमने सुना है दादी ने रोटियां बना के पोस्ट में भी भेजती थी कई लोगों को विदेश में, तो बाबा के घर का अन्न किसी के पेट में जाए।
दादी को भोजन साधारण भोजन नहीं है, वो हमेशा ब्रह्मा भोजन है। और दादी का खाना बहुत बहुत लिमिटेड था। मैंने कभी नहीं देखा दादी को दूसरी रोटी खाते हुए, एक ही रोटी खाना है। तो जब मैंने देखा कि मैं ही खाना बनाती थी दादी का, पहले जब बड़ी दादी थे तो दादी हमेशा बड़ी दादी के साथ भोजन करते थे, दिन का भोजन और रात का भोजन, नाश्ता दादी अपने रीते से करते थे, तो एक ही रोटी खाना। तो हमने सोचा कि एक ही रोटी खाते हैं थोड़ी बड़ी बना दो, तो वो भी दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि क्यों रोटी बड़ी क्यों बनाई, गुजराती रोटी ही बनाने का। तो ऐसे एक ही रोटी खाना है। और मैं देखती थी कि भोजन करते नाश्ता करते दादी बिल्कुल साइलेंस में खाना पसंद करती थी और अकेला हमेशा रूम में अकेली ही दादी होती थी। हम परोसने के लिए जाते थे और जैसे एक एक गिराई पर दादी जैसे बाबा को याद करके खाती है। हमने कभी दो सब्जी बनाई तो दादी पूछेंगी आज दो सब्जी क्यों बनाई, तो मैंने एक बार कहा दादी बड़ी दादी की ये सिस्टम है कि एक सब्जी यदि अच्छी नहीं लगती हो तो दूसरी सब्जी के साथ तो रोटी खा सकते हैं ना, तो इसीलिए दो सब्जी बनाई। तो वो भी दादी का बहुत लिमिटेड पोर्शन होता था, अच्छा लगा है तो ज्यादा खाओ ये उनकी नेचर में बिल्कुल भी नहीं था। हम कहते थे दादी ये अच्छा है ना आप दूसरा लेंगे, तो कहती नहीं। तो मैंने बहुत ही अनासक्त वृत्ति से वो खाना खाते थे और ब्रह्मा भोजन, बाबा का भोजन, बाबा के यज्ञ का भोजन, वो भावना हमेशा रहती थी। और जब ज्ञान सरोवर बना तो दादी हमेशा ज्ञान सरोवर के भंडारे में डाइनिंग में ही जाकर के भोजन खाना पसंद करते थे। तो जो पेशेंट भंडारा है वहां दादी का भोजन बनता था, क्योंकि दादी मिर्ची नहीं खाते थे, ज्यादा तेल नहीं खाते थे। और फिर डाइनिंग वाले भाई लोग, दादी पहले पूछती थी उन्हों को कि आप लोगों ने खाना खाया, तो कहते हैं नहीं खाया दादी, तो कहते चलो सब बैठो खाने के लिए। तो ऐसे ही दादी सबको अपने साथ बिठाती थी, कहते आप लोग खाना खाओ। इवन शुरुआत में मैं जब आई तभी दादी ने भी मुझे ये बात कही थी कि तुम भगत नहीं बनना। भगत नहीं बनना मैंने समझा नहीं, तो फिर दादी ने कहा कि ऐसे नहीं कि मैं खाऊं तब तुम खाओ, क्योंकि आप हमेशा नाश्ता पहले कर लो फिर मेरे को नाश्ता कराओ और वो भी देखो कि मैं फ्री हूं। और वो भी दादी बड़ी पीछे डाइनिंग में जहां धूप हुआ करती थी पांडव भवन में, वहां ही खाने के लिए आते थे। तो मैंने देखा कि बहुत अनासक्त वृत्ति भोजन के प्रति और बहुत ही कंट्रोल में अपना भोजन करती थी।
तो दादी ने यह ध्यान रखा था, बाबा ने उनको बोला था कथा किए बिना नाश्ता नहीं करना है,
वो भी बात थी।
इसलिए जो हम मुरली सुनते हैं तो आपस में ही कथा कर लें, जो मुरली का लेन देन कर लें तो नाश्ता तक पहुंचे। तो ये जो दो दिन हैं, डेढ़ दिन है, तो हम भी ये ध्यान रखें, भले दो रोटी या तीन रोटी खाना है लेकिन उसको वेस्ट नहीं करना है। एक दाना भी हमारे थाली से ब्रह्मा भोजन का डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए, जो हम आसानी से फेंक देते हैं। और दुनिया में भी कहते हैं जो भोजन हमारे थाली में ऐसे ही नहीं आ जाता है, एक दाना भी आना है कोई ना कोई व्यक्ति 3 मास उसको मेहनत किया है, एक दिन नहीं दो दिन नहीं है 3 मास मेहनत करेगा तभी ही कोई उगा सकेगा उसको। तो जो 3 मास कोई व्यक्ति मेहनत करके हमारा ताली में पहुंचा रहा है उसकी मेहनत का वैल्यू हमको रखना है, वेस्ट नहीं करना है। तो आखिरी में जो आपके दादी के साथ जो आपने 30 साल 35 साल आपने गुजारा है, ऐसा कोई है जो आपको अनफॉरगेटेबल, जैसे भूल नहीं सकती है वो बात, और आज भी वो सोचते हैं तो आपको ताकत बढ़ जाती है या खुशी आ जाती है, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप सुनाएं।
बहुत बातें तो हैं लेकिन हमने ये देखा कि दादी ने इस आत्मा के ऊपर बहुत बहुत विश्वास रखा था। और दादी कई बार मुझे कहते भी थे कि ये तुम कर सकेगी। मैं कहती थी दादी मैं कैसे करूं, लेकिन दादी कहती नहीं तुम करेगी। और ऐसे ही एक बार मैं समझती हूँ 2001 में या 2000 में गुलजार दादी को दुबई से बहरीन जाना था और जगदीश भाई की तबीयत यहां बिगड़ गई तो दादी जानकी ने गुलजार दादी को बुला लिया मधुबन। दादी टूर पर थी तो अचानक दादी ने मुझे कहा कि तुम जाओ। मैंने कहा दादी दादी के प्रोग्राम में मैं जाऊं? कहती और कौन जाएगा, तुम जाओ। मैंने कहा दादी आप मधुबन में बैठे हो? कहती कोई हर्जा नहीं। अचानक मेरे को बोला कि आप जाओ और 3 दिन के अंदर वीजा आई और मैं गई। मैं उस दिन पहुंची हूं बहरीन में जिस दिन दादी गुलजार का प्रोग्राम था। वहां कोई सेंटर नहीं था, कोई स्टूडेंट नहीं थे और मुझे अचानक दादी ने कहा कि तुम जाओ और ये तुम कर सकेगी। दादी ने वहां एक लंदन के युगल को बोला था कि आप लोग दादी आ रही है तो एक अपार्टमेंट लो और दादी रहेगी और वहां प्रोग्राम करवाना, सेवा करवाना, मुझे सेंटर खोलना है। तो अचानक दादी ऐसे प्रोग्राम बना देती थी और वे बहुत विश्वास से मुझे भेजा। और फिर दादी ने कहा जब तक सेंटर एस्टेब्लिश नहीं हो जावे तब तक तुमको वापस नहीं आना है। तो ऐसे ही मैं उस गई, तब तो 6 मास रह सकते थे, 6 मास रही, फिर मधुबन आई, फिर 6 मास गई, फिर आई। तो ऐसे अचानक दादी कोई भी बात बोल देते थे और एक उम्मीद रखते थे कि ये करेगी। तो ऐसे तो कई बातें हैं जो दादी ने ऐसे ही अचानक के पेपर में भी मुझे आगे किया था और मैंने उनसे एक विश्वास जो दादी का था और मैंने वो विश्वास को बनाए रखने में बाबा की मदद, दादी की मदद, और वो बात सहज हो जाती थी।
तो जब बड़ों का बात हम सुनते हैं, जो बड़े विश्वास हमें पे रखते हैं, जो वो कार्य हम करते हैं, तो उनकी दुआ जो या उनकी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं हमारे जीवन में बहुत कुछ कर जाती है या बल भर देती है। तो आपसे और भी बहुत सारे बातें होंगी तो आपसे सुनते रहेंगे। तो आपका जीवन जैसा हमारा भी जीवन में ये बातें हम ध्यान रखें तो हमारा भी जीवन उस प्रकार से बने जो खुशी या नशा, जो आज बाबा ने बोला ये खुशी नशा कम नहीं होनी चाहिए, तो हमारे जीवन में बरेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप अपने अमूल्य अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया।